चाहिए। तो मणि जिसके पास पाया जाएगा वही दोषी माना जाएगा। एक तो उसके मन में ये बात है, क्या वह भी दोषी माना जाएगा, अथवा ये सोचा कि मैं ही भाग करके बच जाऊंगा और मणि अपने किसी व्यक्ति के पास रख दूंगा तो वो भी बचा रहेगा, इसलिए उसने अक्रूर जी को मणि दिया कि रखिए मणि रखिए, और अक्रूर जी रख लिए, वो भी तुरंत कपड़े में लपेट करके उसके उसका प्रकाश रोक करके अपने अटैची में अलमारी में रख दिए, जो भी होगा देखा जाएगा। अब सपधनवा दूसरे दिन भागा द्वारका छोड़ करके, तो एकदम पता चल गया कि अब हमको कृष्ण मारेंगे, कृष्ण बलराम दोनों मिलकर। तो तस्मिन अश्वमारोही सत योजन गम जयो, तो अक्रूर जी के पास मणि रख करके उनकी अनुमति से ही रख करके और सपधनवा निकल गया द्वारका से, एक बहुत द्रुतगामी घोड़े पर चढ़ा हो जो एक बार में 800 माइल जा सकता था, एक बार चल करके 800 माइल चल करके बहुत तेज रफ्तार से तब थकता था घोड़ा, ऐसे घोड़े पर चला, बहुत दूर होता है 800 माइल मतलब लगभग 1200-1300 किलोमीटर होगा, इतना चलता था एक बार में। सत जो जनगम सत योजन चलता था, एक योजन 4 कोस का होता है, तो 100 योजन में 400 कोस ऐसे घोड़े होते थे पर। तो चला, अंतर्जामी भगवान कृष्ण ने ही उसको प्रेरित किया कि अक्रूर के पास मणियों फेंक दे या दे दे अक्रूर जी को, या दिया भागा। भगवान को पता लगा कि सतधनवा बहुत तेज गति से चलने वाले घोड़े से भाग गया द्वारका से, तो ये दोनों भाई भी चले गरुण ध्वज रथ पर चढ़कर, उस रथ पर जिस पर गरुण जी का चिन्ह था। गरुण ध्वज में आरोप्य आरुह्य रथम राम जनार्दन अन्वयाता महावे गई रस्व राजन गुरु द्रुहम। गुरु का अर्थ ससुर, ससुर का वध करने वाले सतधनवा के पीछे पीछे दोनों भाई बहुत तेज गति से चले, वो बहुत दूर निकल गए लेकिन ये लोग दोनों भाई रथ पर चढ़ करके चले। महावेग ही अश्व, इस रथ में भी महावेगवान घोड़े लगे थे, तो वे भी उसी चाल से चलते थे लेकिन उससे और अच्छे घोड़े थे, वे और ज्यादा चल सकते थे। तो दोनों भाई तीव्र गति से चलने वाले घोड़ों से जुटे हुए रथ पर चढ़कर चले, भागते भागते द्वारका से, देखिए द्वारका कहाँ है और कहाँ है मिथिला, भागते भागते वो चला गया मिथिला में। मिथिलायाम उपवने विसृज पतितम हयम पद्भ्याम धावत संत्रस्त कृष्ण अप्यन्वत द्रवत दृशा। तो जाते जाते मिथिला के उपवन में, राजधानी से बाहर बगीचे में, वो घोड़ा गिर गया, उसका सतधनवा का घोड़ा गिर गया, क्योंकि अब लगभग पूरा हो चुका था 100 योजन चल करके, तो उतने ही चल सकता था, इस बार थक करके घोड़ा गिर गया। जब घोड़ा गिर गया तो इसके बाद पैदल भागा, घोड़ा छोड़ करके सतधनवा पैदल भागा। जब पैदल भागा तो भगवान श्री कृष्ण भी रथ से उतर करके पैदल भागने लगे उसको पकड़ने के लिए, ये रथ पर नहीं गए, धर्म युद्ध था। जब बेचारा पैदल भाग रहा है तो भगवान भी पैदल उसका पीछा किए, बलराम जी रथ पर ही बैठे रहे, वो भी आ रहे होंगे धीरे धीरे, लेकिन भगवान पैदल उसको पकड़ने के लिए चले। पदा तेर भगवान स्तस्य पदा तिष्ठ ने मीना चक्रेण सिर उत्कृत वासुर्व्यचिन मणि। क्योंकि वह पैदल भाग रहा था इसलिए भगवान भी पैदल ही भागे, और जाते जाते कुछ दूर जाने के बाद तीक्ष्ण धार वाले सुदर्शन से उसका सिर काट दिया भगवान ने। भगवान चाहते तो द्वारका के बाहर होते ही काट दिए होते, लेकिन भगवान की अद्भुत लीला है, इतने दूर तक पीछा किए इसका मणि मारने के लिए, उसका वध करने के लिए और मणि के लिए। और भगवान को पता है वो मणि अक्रूर जी के पास है, फिर भी नाटक ऐसा कर रहे हैं कि मणि उसके पास है, वो लेना है लेना है। तो मारे सिर उतर गया, गिर गया, उसका लाश गिर गया। तो जो कपड़ा पहना था, पैकेट था, चाहे जो भी होगा, उसमें भगवान मणि देखने लगे, खोजने लगे मणि कहाँ, व्यचिन्ह मृगया मास मणि खोजने लगे। मरे हुए शरीर में कपड़ा को लपेटा था, उसमें खोजने लगे सब, मणि नहीं मिला। तो यहाँ प्रश्न होता है कि भगवान इतना दूर तक क्यों आए, इसका पीछा करते करते, और यहाँ आकर के दिखा रहे हैं कि मणि नहीं मिला। वास्तव में कारण ये था कि भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी की वंचना के लिए आए थे। श्री बलराम जी की आदत थी कृष्ण का संग कभी नहीं छोड़ते थे, और भगवान कभी कभी चाहते थे कि थोड़ा ये अकेले अपने प्रेमियों के पास जाएं और कुछ लीला द्वारका में हो सके। बलराम जी के रहने पर सब कुछ नहीं हो सकता था, कोई उपद्रव वहाँ हो नहीं सकता था, कोई चढ़ाई नहीं कर सकता था, आक्रमण नहीं कर सकता था कुछ। अब जैसे ब्रज में यदि बलराम जी साथ में गए होते तो कृष्ण काली दमन नहीं किए होते, उनको दह में कूदने ही नहीं देते, पकड़ करके रखते। तो कुछ लीला भगवान करना चाहते हैं, उसमें वो चाहते हैं कि बलराम जी ना रहे। तो ये चाहते थे कृष्ण कि हमारे बहुत बड़े भक्त हैं बहुलाश्व महाराज, जनकपुर के राजा जनक महाराज, उनके यहाँ बलराम जी को भेजना चाहते थे। इसीलिए ये सद्धनवा का पीछा करते करते मिथिला के उपवन में चले गए, और वहाँ उसका मणि, उसके पास मणि खोज करके आ करके फिर बलराम जी से कहते हैं, अलब्ध मणिरागत कृष्ण आहाग्र जान्तिकम वृथा हतः सद्धनुर्मणि तत्र न विद्यते। भगवान ने आकर के अपने अग्रज बलराम जी से कहा कि वृथा हतः सद्धनु, सद्धनवा वृथा मारा गया, मणि तत्र न विद्यते, मणि इसके पास नहीं है, मैं तो खोजा मणि नहीं है, वृथा हतः, ये व्यर्थ मार दिया गया। और ये कहने लगे बताइए कितना दूर हैरान हुए, ये हम मिथिला में आ गए, भगवान ही बोल रहे थे। शेख बलराम जी को ये याद आ जाए कि बहुलाश महाराज से भेंट करना है, हमारे मित्र हैं। तो जब बलराम जी ने सुना तो समझ गए कि इसकी क्या इच्छा है। बलराम जी तो सर्वज्ञ समझ गए। तो बलराम जी कहते हैं, तथा आह बलो नूनम स मणि सत धनवना कस्मिंसित पुरुषे न्यस्त तमन वेश पूरम ब्रज। बलराम जी थोड़ा कुपित हो गए भीतर से, इसलिए यह प्रेम का कोप था कि मैं जानता हूँ ये मुझको यहाँ भेजना चाहते हैं। तो बलराम जी ने कहा कि ठीक है, निश्चित है कि सब धनवा ने मणि किसी पुरुष के पास रखा होगा। बलराम जी को भी मालूम है कि वो अक्रूर के पास रखा है। लीला आवेश में भूल जाते हैं भगवान, लेकिन अब ध्यान में आ गया कि वो अक्रूर के पास रखा होगा। तो भगवान से श्री बलराम जी ने कहा कि वो कहीं रखा होगा पुरुषे न्यस्तम, और अक्रूर के पास रखा होगा, तम अन्वेष जाओ तो मणि खोजो द्वारका में, जाओ द्वारका और मणि का खोज करो, और मैं तो अब जा रहा हूँ मिथिला नरेश के पास, वे मेरे बहुत प्रिय हैं, मैं उनसे भेंट करूँगा। अहम विदेहम इच्छा मी द्रष्टुम प्रियतम मम। राजा विदेह है, जनक महाराज हमारे बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, मैं उनसे दर्शन करना चाहता हूँ, उनसे भेंट करना चाहता हूँ, और तुम जाओ द्वारका, जो करना हो करो, मणि खोजो, घर जाओ, जो करना हो करो। बलराम जी थोड़ा सा क्षुब्ध हो गए कि कृष्ण हमको यहाँ भेजना चाहते हैं, क्योंकि बार बार कृष्ण कह रहे थे कि बहुत निकट आ गए हैं जनक महाराज के पास, तो आप तो चले तो बहुत हैरान हुए हम लोग, ठीक है चले अब लौट गए द्वारका, क्या करेंगे। तब बलराम जी ने कहा कि अरे सब समझ रहा हूँ, ठीक है तुम जाओ द्वारका, हम जा रहे हैं उनके पास। मिथिला नरेश के पास जा रहे हैं, कहकर गए। वहां गए, भवन में प्रवेश किए तो तम दृष्ट्वा सहसत्थाया मैथिला प्रीत मानस, महाराज जनक बहुत प्रसन्न हुए और विधिवत बहुत पूजा किए बहुत सामग्रियों से। वास कत्तस्याम कतचिन मिथिलायाम समा विभु, श्री बलराम जी कुछ वर्ष तक रहे वहाँ, समाकार से संवत्सर, कुछ वत्सर रहे, बहुत दिन बिताए वहाँ पर। तो ये प्रश्न होता है कि महाराज जनक कुछ स्वागत सत्कार में ढिलाई भी किए होंगे जब इतना दिन रह गए, तो कहते नहीं नहीं, मानतः प्रीत युक्त न जनके न महात्मना। जनक महाराज एक महान भागवत पुरुष हैं, बहुत प्रसन्न थे बलराम जी के वहां रहने से, उनको जबरदस्ती वे रोके थे और बहुत खुशी के साथ। ततो शिक्षत गदानकाले धातराष्ट्र सुयोधन, वहीं पर दुर्योधन आया बलराम जी का पता लगा करके, और वहीं पर बलराम जी ने उसको गदा युद्ध की शिक्षा दिया था। गदा से कैसे युद्ध किया जाता है बलराम जी ने सिखाया था उसको। तो दुर्योधन का ट्रेनिंग बहुत था गदा युद्ध में, भीमसेन का बल बहुत था लेकिन ट्रेनिंग ज्यादा नहीं लिए थे, दुर्योधन बहुत अभ्यास किया था और श्री बलराम जी ने सिखाया था। अब ये तो बलराम जी की कथा, केशव की कथा सुनी जो ब्रज में आकर किया। केशव द्वारका नित्य निधनम सत धन्वन अप्राप्ति च मणिम प्राह प्रियाय प्रियकृत विभु, उधर उनको तो वंचित किए ही, वंचित का अर्थ है कुछ बात छिपाना श्री बलराम जी से, अब सत्यभामा से भी कुछ बात छिपा रहे। यहाँ आकर के भगवान ने सत्यभामा जी से अपनी प्रिया से कहा कि सब धनवा का निधन हो गया, मार दिया गया, लेकिन मणि उसके पास नहीं मिला। जैसे लगता है कि इनको पता ही नहीं है कि मणि क्या हुआ कहाँ हुआ, सब पता है कि अक्रूर जी के पास मणि है। प्रिया यह प्रिय कृत विभु, तो सब धनवा मारा गया, यह प्रिया का प्रिय था, और रो रहे थे विलाप कर रहे थे अपने पिता के निधन से, इसलिए उसका बदला चुकाकर भगवान ने उसका प्रिय किया। ततः सकारयामा स्वक्रिया बंधुर हतस्वई, इसके बाद भगवान ने वह क्रिया किया जो अपने मरे हुए बंधु के लिए की जाती है। क्या बंधु का अर्थ है ससुर, ससुर मर गए थे और बिना पुत्र गए थे, इसलिए कृष्ण ही उनके पुत्र हुए, तो उन्होंने सब क्रिया किया, यहाँ तक दाह संस्कार भी किया और सब क्रिया किया। साकम सुहृद भी भगवान याया शिव सांपरायिका, परलोक में जीव की शुभ गति के लिए जो जो क्रियाएं अपेक्षित हैं शास्त्र द्वारा लोक द्वारा, वो सब क्रिया भगवान ने किया। याया साम शिव सांपरायिका, सांपरायिक का अर्थ होता है परलोक में सुख के लिए शुभ गति के लिए यहाँ पर कुछ किया जाता है को सांपरायिक क्रिया कहते हैं। कभी कभी लोग अपने जीवित अवस्था में ही कुछ ऐसी क्रिया कर देते हैं, अथवा जो हम लोग मान लीजिए जीवित है तो ये धर्म करते हैं, बहुत से दान करते हैं, श्रीमद् भागवतम सुनते हैं पढ़ते हैं, ये सब सांपरायिक क्रियाएं होती हैं। इस लोक में भले कोई लाभ न दिखता हो लेकिन परलोक में बहुत बड़ा लाभ है, और खास करके मरे हुए स्वजन के लिए कुछ किया जाता है उसको सांपरायिक क्रिया कहते हैं। तो भगवान ने सब किया, बड़े ढंग से किया, तो ताला नहीं। अक्रूर कृत वर्मा च श्रुतवा सद्धन और बधम व्यसतुर भय वित्रस्त द्वारकाया प्रयोजक, अक्रूर और कृत वर्मा ने जब यह सुना कि सतधनवा मार दिया गया तो ये लोग भी द्वारका से भाग गए, क्योंकि प्रयोजक सतधनवा को मणि चुराने में ये लोग इंस्टिगेटर थे, ये कहे प्रयोजक थे, इसलिए ये दोनों भाग। तो जहाँ तक अक्रूर जी की बात है, भगवान की अनुमति थी इस विषय में कि अक्रूर जी मणि लेकर के जाएं, वो तो यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, इसलिए वो ठीक है, भगवान चाहते थे। मणि का वास्तविक उपयोग यही था, किसी के पास धन हो तो यज्ञ हो, दान हो, खूब उत्सव चले, भोजन कराया जाए। तो अक्रूर जी इस विषय में बहुत सिद्ध थे, तो वे तो भगवान की अनुमति से, ऐसा शास्त्रांतर में कथा है कि भगवान से पूछ करके वे काशी चले गए। भगवान ने कहा कि आप जाइए जाइए वहां। काशी उनकी माँ का नैहर था, वहां पर एक काशी नरेश थे। तो एक बार वहां वर्षा नहीं हो रही थी काशी क्षेत्र में, तो स्वफल्क जी, अक्रूर जी के पिताजी वहां गए हुए थे, तो उनके साथ अपनी कन्या का विवाह किया काशीराज ने, काशी नरेश ने। तो वहां खूब वर्षा हुई थी, तब से मान्यता थी कि स्वफल्क जी जहां जहां रहते हैं वहां वर्षा बहुत अच्छी होती है, बीमारी नहीं फैलती है, कोई दुख नहीं होता है शारीरिक मानसिक किसी को। तो उसके बाद यह भी मानता थी कि उनके पुत्र अक्रूर जी भी वैसे ही गुण वाले हैं, वे भी जहां रहते हैं वहां वर्षा होती है, सब सुख रहता है, संपत्ति रहती है। तो अक्रूर जी ने दान देने की बहुत दान देने का उनको बहुत शौक था, अभिरुचि थी। किसी किसी पुरुष की भोगने में रुचि रहती है, ऐसे घर बनाओ, ऐसा ये करो, ये करो, इसी संकल्प में रहता है। कुछ लोग कैसे भगवान की सेवा होगी या कैसे दूसरे का उपकार होगा, इसमें ज्यादा रुचि रखते हैं। तो अक्रूर जी को दानपति कहा जाता है, कंस भी इनको दानपति संबोधन करता है, दान देने वाले में सर्वश्रेष्ठ। तो अक्रूर जी तो चले गए काशी, जानते थे भगवान। तभी कभी प्रश्न होता है कि कृत वर्मा को क्यों छोड़ दिए थे, कहीं भागा होगा तो भगवान को तो पता होगा। लेकिन श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जब अक्रूर जी पर कोई एक्शन नहीं लिया भगवान ने, तो कृत वर्मा पर भी नहीं ले सकते थे। क्यों? कि यदि अक्रूर जी को छोड़ देते और कृत वर्मा को दंडित करते तो भगवान का भक्त पक्षपात प्रकट हो जाता, भगवान इसको छिपाना चाहते थे। अगर अक्रूर जी को दंडित नहीं करते हैं और कृत वर्मा को करते हैं तो लोक में प्रकट हो जाएगा कि अक्रूर इनके भक्त हैं, इसलिए वो द्रोह भी करें, दुराचार भी करें, तभी ये माफ कर देते। तो इसलिए भगवान दोनों की उपेक्षा कर दे, उपेक्षा केवल कृत वर्मा की किए, लेकिन अक्रूर जी को तो जानते थे कि दान करना। तो फिर लेकिन एक बात का बहुत बड़ा प्रचार हो गया कि कृष्ण सब धनवा का वध तो किए, लेकिन अक्रूर भी तो उसने इंस्टिगेट किए हैं, तो उनका कुछ नहीं कर रहे हैं, कृत वर्मा का कुछ नहीं कर रहे हैं। और मणि नहीं मिलने पर लोगों में यह दोष बुद्धि हो गई कि सब धनवा के पास मणि नहीं है और कृष्ण ने उसका वध किया, कृष्ण को जानकारी है कि मणि किसके पास है, उसका कुछ नहीं करते हैं, वध नहीं करते हैं, और सब धनवा का वध कर दिए। और मणि कहाँ है ये पता होते हुए नहीं दंड दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि मणि को चुराने में कृष्ण का हाथ है, ये कृष्ण की योजना से मणि सब चुराया गया। और कृष्ण यह कह करके हस्तिनापुर चले गए थे कि उनको कोई चोर न कहे, ये बात फिर फैलने लगी, जोर शोर से द्वारका में फैलने लगी कि ये मणि चुराने में कृष्ण का हाथ है। सामने देने पर नहीं लेते हैं, लेकिन पड़े हुए हैं कि किसी तरह हमारे हाथ में आ जाए। खुलम खुला लोग अपने अपने घरों में ये सब बातचीत करते थे। भगवान ने सोचा कि तो अद्भुत बात हो गई। तब फिर वे अक्रूर जी को बुलाना चाहते हैं और मणि कैसे उनको मिला, कैसे कैसे सब बातें बताना चाहते हैं अक्रूर जी को बुलाकर। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह हुई भगवान की इच्छा से ही कि द्वारका में लोगों के शरीर में कुछ रोग होने लगा, मन बेचैन रहने लगा, पानी भी नहीं बरसता था। अक्रूरे प्रोषिते अरिष्टानासन वही द्वार कहु कसान। अक्रूर जी बाहर जब चले गए तो ये सब होने लगा, शारीरा मानसास्ता पर मुहूर्त दैविक दैविक भौतिक, बहुत से भौतिक दैविक और शारीरिक कष्ट होने लगे। भगवान की इच्छा से हो रहा था, लेकिन भगवान यह दिखाना चाहते थे कि अक्रूर जी के बाहर जाने से ये सब हुआ है, तो अक्रूर को बुलाने का एक बहाना मिलेगा। परंतु इस प्रकार की जो लोग बात कहते हैं उसको दूषित कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, ठीक नहीं है कहना है कि अक्रूर के चले जाने से द्वारका में अनिष्ट होने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा। क्योंकि मुनि वास निवासे किम घर तेता रिष्ट दर्शनम, समग्र मुनि जन कृष्ण में वास करते हैं, उनका मन कृष्ण में लगा रहता है, और ऐसे श्री कृष्ण जिस नगर में रह रहे हैं तो वहां पर अरिष्ट का दर्शन कैसे हो सकता है, कैसे कोई बीमारी पड़ सकती है, कैसे किसी को चिंता ग्लानी दुर्भिक्ष ये सब कैसे हो सकता है। तो यह कहना वास्तव में गलत है कि अक्रूर जी के जाने से होने लगा। वास्तव में भगवान कृष्ण की इच्छा के बिना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था, उनकी इच्छा थी कि यह हो। तो लोग आपस में बात करते थे अक्रूर जी के विषय में कि देवे अवर्षति काशी सफल का या गता हुई यही। जब देवराज इंद्र वर्षा नहीं कर रहे थे काशी क्षेत्र में तो सफल जी काशी गए थे, वहां उनके साथ अपनी कन्या गांधिनी का विवाह किया काशी नरेश ने, तो बहुत वर्षा हुई थी। तो उस समय से यह मान्यता हो गई कि उनके पुत्र भी उसी गुण वाले हैं। तत्सुत तत् प्रभावों से अक्रूर जत्र जत्र देवो भी बरसते तत्र नोपतापन मारिका। इस प्रकार से लोग कहते थे कि अक्रूर जहाँ रहते हैं वहाँ वर्षा ठीक से होती है, वहाँ महामारी नहीं फैलती, वहाँ उपताप नहीं होते, सब कुछ ठीक रहता है। तो वृद्धों के इस वचन को सुनकर, और यदि भगवान जानते थे कि यही कारण नहीं है, वास्तव में मणि का द्वारका में न होना भी कारण है। भगवान दूसरे के मत को भी कह रहे थे, कुछ लोग कहते थे अक्रूर जी नहीं है इसलिए द्वारका में ऐसा हो रहा है, कुछ लोग कहते थे मणि नहीं है इसलिए हो रहा है, लेकिन वास्तविक बात थी कि भगवान कृष्ण की इच्छा थी थोड़े देर के लिए कि ऐसा हो, इसलिए हो रहा था। तब भगवान ने मीटिंग किया और कहा कि ठीक है हम अक्रूर को बुलाते हैं। इति मत्वा समान प्राह क्रूरम जनार्दन। भगवान ने भेजा दूत को काशी और कहा कि आपको भगवान ने बुलाया। भगवान ने ये नहीं कहा था कि मणि के साथ आइएगा, केवल ये लिखा था कि आप आइए द्वारका, चाचा जी संबोधन करके उन्होंने पत्र लिखा था। तो अक्रूर जी आए तो पूजयित्वा भी संभाष्य भाषणम कथयित्वा प्रिय कथा विज्ञाता अखिल चित्तज्ञ स्मय मानुवाच। भगवान ने उनको एकांत में बुलाया अक्रूर जी को और पूजा किया, सम्मान किया, बहुत तरह से प्रेम से बात किया, प्रिय कथा बोले भगवान अक्रूर जी से। कोई भर्सना नहीं कि आपने हत्या कराया या चोरी कराया या करा, कुछ नहीं ये कहा, बहुत प्रिय बात भगवान ने कहा। तो सबके चित्त की बात कोई जानते हैं कृष्ण, तो भगवान जान गए कि मणि के प्रति इनकी कोई अपेक्षा नहीं है। मणि है तो सोना होता है, उसे यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, होता है, लेकिन मणि के प्रति कोई इनका आकर्षण नहीं है। अन्यथा ये काशी से आते तो मणि को वहीं रख करके आते हैं, मणि ले करके आए हैं। तो अक्रूर जी की कोई अपेक्षा नहीं थी मणि के प्रति, भगवान ने देखा। तब ये कहने लगे, भगवान ने उनसे कहा ननु दान पते न्यस्त स्त्वयि आस्ते सत धनवना श्यमंत को मणि श्रीमान विदितः पूर्वमेव न। चाचा जी हमको पहले से ही पता है, देखिए भगवान है साफ बोल रहे हैं, विदितः पूर्वमेव न, हमको पहले से ही पता है कि सत धनवा ने श्यमंतक मणि आपके पास रखा है। अभी मत पूछिए कि किसने कहा, हमको पहले से ही पता है। सेमंतक मणि आपके पास है, सद्भावना ने आपके पास रखा है, तो देखिए उस सेमंतक मणि किसका है। तो अक्रूर जी ने कहा तो सत्राजित का है, सत्राजित का है ना, तो सत्राजित में पत्यत्वाद गृहणीय दुहित होता है, सत्राजित बिना पुत्र के हैं, इसलिए उनके संपत्ति को उनकी पुत्री के लड़के लेंगे। भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि उनकी पुत्री का पति मैं लूंगा कितनी शिष्ट भाषा भगवान बोल रहे हैं, सत्राजित को कोई पुत्र नहीं है इसलिए उनकी पुत्री अधिकारी है, यह भी ना कह करके भगवान ही कहते हैं कि उनकी पुत्री के जो पुत्र हैं वे सत्राजित के अर्थात नाना के धन के अधिकारी हो। और सद्धनवा ने आपके पास रखा है, सद्धनवा उसका अधिकारी नहीं है, भगवान ने यह भी कहा कि आप भी अधिकारी नहीं है, उस धन के अधिकारी सत्यभामा के पुत्र हैं। दायम मिनी याप पिंडन विमुख चरणम च शेषित, वो जो धन का अधिकारी होता है तो वे अपह पिंडन जल और पिंड दे करके श्राद्ध करके जो दायम शेषितम जो दाय बचा रहता है, जो धन बचा रहता है तो उसको वह लेता है, अपने पूर्वज के ऋण से मुक्त होता है, उनका पिंडदान करके श्राद्ध करके जो भी खर्च करना है करके, और जो बचता है तो रखता है। तो सत्राजित का जो भी संस्कार किया गया तो संस्कार करके उसमें जो भी धन बचा है तो समंतक मणि तो पूरा ही बचा है, तो यह सही सही देखा जाए तो यह सत्यभामा के पुत्रों का हक है, ऐसे शास्त्र उदाहरण भगवान ने दिया कि देखिए किसी के मरने पर उसके धन का अधिकारी कौन कौन होता है, चाहे जीवित हो, किसी व्यक्ति के धन का पहला अधिकारी होती है पत्नी, पत्नी दुहित तरह और पुत्रियां, पत्नी पहला अधिकारी है, और अगर पुत्र है तो है ही, लेकिन अगर पुत्र नहीं है तो पत्नी, पत्नी तो पुत्र के रहते हुए अधिकारिणी है, पत्नी इसके बाद दूसरी तरह पुत्रियां, चाहे वह पितर हो, और कदाचित मान लीजिए किसी व्यक्ति के पत्नी भी नहीं है और पुत्रियां भी नहीं है, तो उसके माता पिता उसके अधिकारी होते हैं, अथवा ये सब अभाव में भाई अधिकारी होते हैं, और तत्सुता दुहितरा अधिकारी होते हैं, मैंने पुत्रियां अधिकारी होती हैं, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि दुहिता मन कहीं विवाह हुआ है लड़की का, वह अपने पति के साथ सती हो जाए तो उसके जो लड़के होते हैं वे धन के अधिकारी होते हैं, अथवा तो भाई के लड़के भतीजा धन के अधिकारी होते हैं, यह गोत्र जाए, या अपना कोई बंधु किसी के न रहने पर अथवा शिष्य या कोई ब्रह्मचारी धन का अधिकारी होता है, ये सब शास्त्र में व्यवस्था है, सब कंप्लीट निर्णित है, ऐसा नहीं कि झगड़ा में पड़ जाए कोई धन की कौन अधिकारी होगा है। तो सत्राजित के धन के अधिकारी सत्यभामा के पुत्रगण हैं। तथापि दुर्धरत्वन्यी त्वयास्तम सुब्रते मणि, मैं इसलिए यह बात नहीं कह रहा हूं कि मणि आपसे लेना चाहता हूं, अन्यों के द्वारा ये मणि दुर्धर है, दूसरा कोई रख नहीं सकता है, जो रखा वो मरा है, आपने तो सामने देखा, भगवान कहते हैं तो दुर्धर हस्तु अन्यी, अन्यों के द्वारा ये दुर्धर है, कोई इसको नहीं रख सकता है, प्रसेन पहन करके गया वो मरा जंगल में, सत्राजित मरा, सद्धनवा मरा, इसको कोई रख नहीं सकता है, केवल आप ऐसे हैं जो रखे हैं कई साल से फिर भी बहुत अच्छे हैं, तो आप ही रख सकते हैं इसको, ठीक है इसके अधिकारी हैं सत्यभामा के पुत्र या होंगे, लेकिन वे लोग भी रख नहीं पाएंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मणि दूसरों को मारे, आप ही के पास ठीक से रहेगा। दूसरों के द्वारा दुर्धर है तो ही आस्तम सुव्रते मणि, आपके पास मणि रहे क्योंकि आप सुव्रत हैं, बहुत व्रत धारण किए हैं। किंतु एक काम कीजिए कि मणि को ला करके उग्रसेन जी के सामने भरी सभा में दिखाइए और बताइए कि आपको मणि कैसे मिला है, बस इतना ही काम। इस बार मणि आप रखिए, हमको मणि से कोई मतलब नहीं, ये तो सबको मारता जा रहा है मणि, केवल आप ही हैं जो यज्ञ कर रहे हैं इस मणि के द्वारा, आपके पास ठीक है और सबके लिए मारक। तो किंतु माम अग्रज समझ न प्रत्येति मणि प्रति, आप रखेंगे आपके अलावा कोई नहीं रख सकता है, लेकिन आपको पता है कि मेरे खास अग्रज मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं मणि के विषय, उनको भी संशय है कि मणि चुरवाने में हड़पवाने में मेरा भी हाथ रहा है, उनको पता नहीं क्या हो गया है, विश्वास नहीं कर रहे। न प्रत्येति पतिया नहीं रहे, न विश्वसिति इति अर्थ, हम पर विश्वास नहीं कर रहे। तो चाचा जी आप मणि ला करके और पूरा पूरा समझाइए कि कैसे आपका मणि मिला हुआ है, बस हमारा अपजस खत्म हो, मणि आपके पास रहे, आप यज्ञ करते हैं मैं जानता हूं। दर्शयस्व महाभाग, चाचा जी आप महान भाग्यशाली व्यक्ति हैं, आप उस मणि को दिखा दीजिए, बंधुनां शांति मावह, बंधुओं में शांति कराइए, कोई किसी के प्रति दोष दृष्टि न करे। तो भगवान ने यह भी कहा कि और आप ये नहीं कह सकते हैं कि मणि आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अविच्छिन्न मखस्ते दे वर्तन्ते रूप में दे दिया, आपके द्वारा जो इतने बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं जिसमें सोने की वेदियां बनाई जा रही हैं, तो इसके पीछे आप क्या अपना इनकम दिखाएंगे बताइए? तो मणि नहीं है तो ये सब यज्ञ कैसे कर लेते हैं आप? ठाकुर जी ने कहा नहीं मणि तो है मेरे पास। तो भगवान ने पहले ही कहा कि आप कह नहीं सकते कि आपके पास मणि नहीं है, नहीं तो सरकार को आपको दिखाना होगा कि इनकम कहां से हो रहा है। और रुक वेदय मखा, जिन यज्ञों में सोने की वेदियां बनाई जाए, अरे बाप इतना इतनी आय इतना बड़ा इनकम तो मणि के कारण हो रहा है ना? ठाकुर जी ने कहा कि हाँ तो उसी के कारण हो रहा है, तो केवल दिखा दीजिए। एवं साम अभिर आलब्ध सफल कतन यो मणि आदाय वासा छन्नम दद सूर्य सम प्रभम। इस प्रकार से जब भगवान ने बहुत प्रेम से उनको समझाया तो ये लाए मणि को, सभा इकट्ठी की गई थी, उग्रसेन जी बैठे थे बड़े आसन पर, श्री बलराम जी भी आ गए थे, सारा समाज भरा पड़ा था। अक्रूर जी लाए मणि को, पहले तो अटैची से निकाले, कपड़ा में रुमाल में लपेटे थे बहुत अच्छी तरह कि प्रकाश बाहर ना जाए, नहीं तो भेद खुल जाता। तो निकाले भरी सभा में, पहले अटैची खोले, खोल करके फिर कपड़ा हटाए, देखे सूर्य समाप्त, सूर्य के समान प्रकाश, और दिखाए समंतकम दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो रजयात्मनः विमृज मणिना भूयस् तस्मै प्रत्यपयत् प्रभु। तो भगवान ने लिया हाथ में और कहा कि देखिए ये मणि है, ये समंतक मणि है, चाचा जी आपको ये मणि कैसे मिला आप कृपया सब बात समझाइए। और क्रूर जी ने भरी सभा में कहा कि जब आप दोनों भाई हस्तिनापुर चले गए थे तो हम और कृतवर्मा सब धनवा के घर पर गए, अब जो भी हमारे मन में आया हमने कहा कि मणि क्यों नहीं ले लेते हो और सत्राजीत का वध क्यों नहीं कर देते हो, तो वध किया, इसके बाद हमारे पास सहायता के लिए आया कि हमको बचाओ, हमने साफ जवाब दे दिया हम कुछ नहीं कर सकते, तो मणि हमारे घर रह करके चला गया। तो मैं भी मणि को लेकर अपने मामा के घर चला गया काशी, वहां जाकर के यज्ञ करता था, ये करता था, ये मणि है। तो भगवान के हाथ में मणि था उस समय, तो क्रूर जी ने कहा कि हमारी जो भी गलती हो हमें क्षमा किया जाए, ये मणि की कथा है। तब भगवान ने कहा, सबसे पूछा कि सच सच बोलिए सब लोग, आप लोगों को विश्वास हुआ कि मणि कैसे हरण किया गया था, सत्रजीत का वध कैसे हुआ, क्या हुआ? सबने कहा कि वो सब कुछ पता चल गया। तो इस प्रकार भगवान ने मणि दिखा करके अपने बंधुओं में जो उनके प्रति दोष दृष्टि थी, कलंक था, उसको दूर किया। अब इस कथा के श्रवण कीर्तन और स्मरण का फल बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। यस्ते तद् भगवत ईश्वरस्य विष्णुर् वीरजाढ्यं वृजिनहरं सुमंगलं च आख्यानं पठति शृणोत्यनुस्मरेद्वा दुष्कीर्तिं दुरितमपो हेजाति शान्तिं। जो कोई व्यक्ति परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के इस आख्यान को सुनता है, इस प्रसंग को, दो अध्याय को, इधर पीछे वाले को, दो अध्याय की कथा को जो सुनता है, अनुस्मरण करता है और बोलता है, वह दुष्कृति को नष्ट कर देता है, उसका दुर्जस खत्म हो जाता है। और दुर्जस का जो मूल कारण है दुरित, अर्थात कर्म बंधन, बुरे कर्मों का फल, वो सब नष्ट हो जाता है। यह प्रसंग वीरजाढ्यम है, भगवान विष्णु की वीरता से, प्रभाव से परिपूर्ण है। ब्रजिन हरम, सब प्रकार के दुख को हरने वाला, सुमंगलम च, और सुमंगल करने वाला है, सौभाग्य देने वाला है। तो जो कोई इसे सुनता है, कहता है या स्मरण करता है, उसका दूषित कर्म बंधन समाप्त हो जाता है, उसकी दुष्कृति समाप्त होती है और वह शांति में जाती, वह परम सुख प्राप्त करता है, शांति प्राप्त करता है। इस प्रसंग को केवल सुनने, कहने और स्मरण करने से उसे शांति मिलती है। इसलिए कहा गया सुमंगलम च और वीरजाढ्यम, भगवान का के वीर्य का इसमें वर्णन है। इतने बड़े धन को भी लेने की भगवान को कोई इच्छा नहीं, जबकि वह उनको धन दहेज में मिला था, खास ससुर ने दिया था, उस पर हक था, फिर भी भगवान उसे नहीं लिए, लौटा दिए। भगवान में कभी कोई लोभ नहीं है, और वो क्या सेमंतक मणि रखकर करेंगे? जिनके पास कौस्तुभ मणि है वो सेमंतक मणि क्या करेगा उसके साथ? हम कुछ भी नहीं। तो भगवान के वीर्य का वर्णन है, भगवान की भगवत्ता का, उनके वैभव का, गुण का वर्णन है इस प्रसंग में। तो कोई भी व्यक्ति जो इसे सुनता है, कहता है या स्मरण करता है, तो उसका सब तरह से मंगल होता है। ब्रिजिन हरम सुमंगलम च, ब्रिजिन का अर्थ जितना भी दुख आने वाला है वो नहीं आ पाएगा, या आएगा भी तो अति क्षीण होकर के आएगा। तो ब्रिजिन हरम कहता है, और सुमंगलम, जीवन में जो सौभाग्य है, सत्कीर्ति, बड़ा बड़ा कर्म करना, भगवान के चरण कमल की प्राप्ति आदि, सब इससे होता है। और लास्ट में कह रहे हैं कि इसे दुष्कृति खत्म होती है, किसी पर कोई, किसी का कोई नाम बिगड़ गया है दुनिया में, दुष्कृति, झूठा नहीं, सच्चा, सचमुच जो गलत काम किया है, जिसको धिकारा जा रहा हो समाज में, लेकिन इस प्रसंग को व्यक्ति सुने, कहे, बोले, तो फिर उसके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य होने लगते हैं कि उसकी सब लोग प्रशंसा करेंगे। अब दुर्जस कोई नहीं कहेगा, क्योंकि दुर्जस का जो मूल कारण है वो है दुरितम। दुरित का अर्थ होता है वह कर्म जो फल देना चालू हो गया है, बुरा कर्म, जो दुरित कर्म, पीछे जो हम लोग कर्म किए हैं वही कर्मों का ही फल हम लोगों के सामने आता है। तो भगवान की कथा में वो शक्ति है कि पहले के कर्म फल को जलाकर भस्म कर देती है, कथा की विशेषता है। और जीव अपार शांति को प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है, शांति मतलब सुख, निश्चिंतता। तो इस कथा का ये फल है। रुक्मिणी मंगल का यह प्रसंग ऐसे अवसर पर यहाँ हुआ भगवान की व्यवस्था से, जबकि मैंने सुना कि कई कन्या और वर का विवाह भी हुआ है, कल भी होने वाला है। अमी का विवाह, इसके पहले सर्वेश का हुआ ना। इस प्रसंग पर अच्छा लगा हमें कि विवाह के अवसर पर विवाह की कथा परम मंगलमय हुई, तो यही है मंगल का कारण। सुनने वाले, स्मरण करने वाले या कहने वाले, सबका मंगल होता है। हम लोग मंगल की कामना करते ही हैं, और मंगल होता है भगवान के भजन से। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गर्ण ध्वज, मंगलम पुंडरी काक्षो मंगलायतनो हरि। गरुड़ ध्वज मंगल, विष्णु भगवान मंगल, हरि मंगलायतन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान मंगलायतन है, वे सबका मंगल करें। और सबसे बड़ा मंगल यही है कि जिह्वा पर भगवान का नाम आता रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शिव इसका जप करते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण सबका मंगल करें अपनी कथा द्वारा, नाम द्वारा, सब तरह से। सबको धन धन की प्राप्ति हो, आरोग्य रहे, कोई रोग न हो, और मनोरथ पूरा हो, शांति प्राप्त हो, यही मैं कामना करता हूँ। और ये तो इसका सहज फल है, हमारे कामना करने न करने में क्या है। ये कथा का बल है कि शांति प्राप्त होगी ही, मंगल होगा ही। बड़े बड़े कर्म बंधन ध्वस्त हो जाते हैं भगवान का नाम लेने से, भगवान की कथा सुनने से, बोलने से। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग हुआ कि इस अवसर पर ये भगवान के विवाह की कथा हुई। और आप सबको भूरी भूरी धन्यवाद है कि आपने हमें यह अवसर दिया, स्थान दिया। न्यू नवदीप धाम में गौर निताय के चरणों में मुझे कुछ कहने का सौभाग्य दिया आप लोगों ने, तो मैं बहुत आभारी हूँ। विशेष करके हमारे गुरु भाई श्री समित ऋषि दास तथा श्री वृंदावन चंद्र दास जी और नील मणि प्रभु द्वारा का मैं बहुत आभारी हूँ। और भगवान कृष्ण के चरणों में आपका प्रेम बढ़ता रहे, यही कामना करता हूँ। हरे कृष्ण।
मैं लिख करके तो नहीं लाया हूँ, पर दो शब्द मैं आपको कि आपकी जो कथा है बहुत ही मनभावनी है। आपने एक एक शब्द वैसे तो कई रूपों से उसकी व्याख्या की, पर भगवान वास्तव में क्या कहना चाहते हैं बिना अच्छे विष्णु के मुख से निकले, ऐसे डायरेक्ट पढ़ने से कोई भी समझ नहीं सकता। आपने वैष्णव के प्रति, भक्तों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, श्री प्रभुपाद के प्रति और भागवत के प्रति, भगवान के प्रति, सबके प्रति आपका अटूट प्रेम है। सभी भक्तों के प्रति आपने भी आशीर्वचन दिए ही है। ऐसे कहा जाता है कि भागवत का डायरेक्ट अर्थ लेना चाहिए, पर वो भी डायरेक्ट अर्थ लेने पर भी कई जगह संस्कृत में ऐसा है कि बिना उसे किसी गुरु की कृपा से या उनके पढ़ाए से या जब तक उनके मुंह से वचन नहीं निकलते वो, और कहीं कहीं उनका इनडायरेक्ट मीनिंग भी कई जगह लिया गया है। डायरेक्ट मीनिंग लेने से हम गलत भी समझ सकते हैं। जैसे अक्रूर जी को कई लोग मानेंगे कि नहीं, उन्होंने मणि की चोरी की, इंस्टिगेट किया, पर तो भी आपने उनमें भगवत्ता दिखाई। मतलब मैं तो पहले भी मैं स्वयं भी गलत ही समझ रहा था, पर उन्होंने भगवत्ता कैसी रही और उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम था और वो भगवान की इच्छा से हुआ, वो आपके वचनों से सुनने से ही पता चला। तो भक्तों की महिमा बढ़ाना और भगवान की महिमा बढ़ाना और उनके प्रति प्रेम भक्तों का भगवान में बढ़ता रहे, लगन बढ़ती रहे, यही आपकी भगवत कथा का फल है और वो आप पूरी तरह से अपने दिल से सबने वितरण कर रहे हैं अथक परिश्रम के द्वारा। एक जगह से दूसरी जगह बिना कहीं भी विश्राम लिए आप जाकर के भगवान का महिमा फैला रहे हैं, भागवत की महिमा फैला रहे हैं। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें और आपसे यही आशीर्वाद है कि जैसे आपने कहा कि भगवान में हमारा विश्वास बढ़ता रहे पर उनमें लगन बढ़ती रहे, हम उनमें हमेशा स्मरण करते रहें और उनके चरणों को कभी न छोड़ें और इस संसार में जो हमारे कोटि कोटि जन्मों से जो बंधन आते रहे हैं या हम उसमें घुले हुए हैं उससे बंधन हमारा करता जाए, ताकि अंत समय में भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए ही संसार से विदा हूँ।
पंखा चालू कर सकते हैं, विंडो भी खोल सकते हैं।
की तरह हमको हम सब लोग को पवित्र करते हैं और हमें कृष्ण भवनों को आप बढ़ा रहे। इससे आज रुक्मणी विवाह और कृष्ण विवाह की कथा में भगवान बलराम जी ने रुक्मणी को शोक दूर करने के लिए जो ज्ञान दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और खास और के चंद्र का और पानी में प्रतिबिंब का उदाहरण देकर आत्मावाद एक का संबंध समझा वो सबसे बहुत अच्छा लगा। यदि आप कृपा करें तो आप और भी दिन कथा सुनाओ सुनाते बहुत अच्छा लगता, हो सके तो अगले साल सुनाने की कृपा करना। आपका सहयोग वृंदावन से
परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, आप इस साल फिर से यहाँ आए और हम हमारा परिवार और सब भक्त को भागवत कथा का लाभ दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ सब भक्त आपके आने की और कथा सुनने की कितनी महीने से परीक्षा करते थे और कई बार हम सब पूछते कि कब महाराज आएंगे, कथा का क्या प्रोग्राम होगा। आज तो वो प्रसंग इतना जल्दी पूरा हो गया 6 दिन में। इस रुक्मिणी मंगलम की कथा में कुछ जानना मिला और सुनने के आनंद हुआ। कितने प्रेम से रुक्मिणी जी पत्र लिखा, तो इससे आपके दिखाया कि कोई भी भक्त इतना प्रेम से भगवान को पुकार करेंगे तब भगवान तुरंत आ जाएंगे। कैसे भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया, उन कैसे उनको बचाए, इसमें से निश्चित हुआ कि कोई भी विपत्ति आए तो भगवान जरूर बचाएंगे। कोई भी वस्तु और कोई धन हमने हमारा कर्म द्वारा और भगवान से कृपा से मिलेगा तो उसको पहले भगवान को अर्पित करना कि खूब जरूरत है अथवा बड़ा अनर्थ होएगा। हमको आपके पास आशीर्वाद मांगना है कि हमको भागवत कथा की श्रवण का बारंबार अवसर मिले। दूसरी प्रार्थना भी है कि इस साल में भी अगस्त में इंडिया वापस जाने के पहले आप यहाँ मेरा और यहाँ सब भक्त के लिए एक दूसरी कथा का प्रोग्राम निश्चित करें। महाराज प्लीज कम अगेन एंड अगेन, गिव अस योर ब्लेसिंग्स एंड एंगेज अस मोर एंड मोर इन डिवोशनल सर्विस। प्लीज गिव अस द ऑपर्चुनिटी टू सर्व यू अगेन एंड प्लीज forgive us for any offenses we have committed or omissions in your services. After that, no man.
ऐसा तो महाराज को हम थोड़े से अज्ञान के कारण से भी उनकी कृपा से वृंदावन से महाराज को जानते थे, तो कभी कभी जब जन्माष्टमी के समय आ जाते तो महाराज प्रवचन करने में वृंदावन में बैठ जाते। तो फिर सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ कहानी वृंदावन में तो सुना था पुताना का वध। तो जब हम गुरुकुल में हमको कहानी बताते कि पुताना का वध कैसा हुआ, तो एक नाटक के तरफ से तो उनका जब वर्ण करते थे तो एक मोटी अरदी बोल के उनका वर्ण करते थे, परंतु जब महाराज ने पुताना के बारे में कुछ बयान किया और हमको बताया तो फिर हमको ऐसा लगा कि न तो हम भागवत में ऐसे श्लोक कहीं दिखे हैं, न तो दिख पाएंगे कभी जीवन में, परंतु उससे भी ये तो डायरेक्ट संबंध का प्रभाव पड़ा था। परंतु महाराज की मान्यता इतना है कि जो व्यक्ति उनके साथ डायरेक्ट भी एसोसिएशन ना करे, तो ऐसे हमारे एक कांग्रेगेशन एक भक्त थे जो एडिशन में रहते थे, तो फिर महाराज आने से 7 महीना पहले वो बोलते थे कि हमने भगवान के बारे में सुनने तो बहुत चाहे, परंतु ऐसा लगता है कि अभी 40 साल के बाद भगवान ऐसा हमको आइडिया दे रहे हृदय से कि कोई शुद्ध भक्त आ रहा है अमेरिका में, कोई आ रहा है और वही करेंगे हमारे उद्धार, बल्कि वो भी महाराज के लिए 7 महीना के लिए प्रतीक्षा किया। तो फिर अभी आगे तो 4 दिन पहले जब महाराज से मिला दिया तो बोलते है कि भगवान हमारी बात सुन ली हृदय से, हम यही बोल रहे थे कि उद्धार करने वाला कोई दे दे, तो इस प्रकार से महाराज जो उनके साथ संबंध भी नहीं है उनको भी कृष्ण कृपा देने के लिए सहमत है, तो उनके बारे में बोले क्या इससे आगे। थैंक यू वेरी मच और धन्यवाद महाराज आपका ये संगत के लिए।
केशव गया है ना, केशव नाम आया।
आदरणीय राधा गोविंद महाराज, राधा रमन गोस्वामी जी, समग्र श्री प्रभु और सभी वैष्णव भक्तों से मैं दंडवत कर रहा हूँ। कृष्ण विवाह के बारे में महाराज ने मानो आंखों देखा वर्णन किया। रुक्मणी जी की इच्छा अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि भक्तगण की इच्छा भगवान सदैव पूर्ण करते हैं। जामवंती और सत्यभामा का विवाह प्रसंग तो मानो सीमांतक ज्वेलर्स का सिनेमा बन गया था। महाराज की कथा तत्व ज्ञान से पूर्ण है और हर समय हमें यही याद दिलाते हैं कि आत्मा और देह भिन्न है। हर आत्मा को अपने कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन को ध्यान में रखते हुए सदैव भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास रहना चाहिए। मैं महाराज से यही विनती करता हूँ कि महाराज आप बार बार न्यूजर्सी आए और हमें भगवान की लीलाएं सुनाते रहें, जिससे हमारा मन भगवान श्री कृष्ण में लगा रहे। आपका नित्य दास विनोद तुलसी सूर्य और केशव।
राधा गोविंद महाराज को मेरा सादर प्रणाम, सभी वैष्णवों को मेरा प्रणाम। हम जब भागवत कथा पढ़ते हैं भागवत जी में, तो हमको इतना अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। पहले मैं जब भी अक्रूर का प्रसंग पढ़ती थी तो मेरे को लगता था कि अक्रूर जी इतने भक्त थे जो वृंदावन की भूमि में ऐसे भगवान के लिए रोते थे और रज रज में आरोटते थे, वही अक्रूर जी ऐसे क्यों किया। अब मुझे पता चला कि वो तो भगवान की अमर्यादित शक्तियों का शक्ति है वो सब, हमको पहले पता नहीं चलता था। फिर हमको जब भगवान ने द्वारिका में घर घर में शादी की और पूरे नगर सजाया गया और पूरे नगर में धूमधाम हुआ, तो हमको पता चला कि हर घर में इतने ही देवकी वासुदेव थे, इतने ही कृष्ण रुक्मणी थे। तो ये प्रसंग को हम अच्छी तरह से समझ सके कि क्या है। फिर उसने चंद्र की कड़ा के उदाहरण से जो बताया कि देह और आत्मा, देह नाशवंत है, आत्मा ही शाश्वत है। और जैसे चंद्र की कड़ा से हमको कभी लगता है कि चंद्र आज क्षय हो गया और आज चंद्र है, अमास की रात को क्षय हो गया, पर ऐसा नहीं है। जैसे चंद्र तो है ही, लेकिन सूर्य का प्रकाश जितना उसके ऊपर पड़ता है उतना दिखाई देता है। वो सब हमको पता चला कि ये देह दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देता है, लेकिन आत्मा की ही सत्ता से देह है, आत्मा की चेतना से ही देह चेतनवंत है। तो ये सब बात जो हम पढ़ते हैं हमको इतना समझ नहीं आता है। ये कथा जैसे तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये कथा दुखों का नाश करके सुख देने वाली मंगलकारिणी है। ये कथा रूपी अमृत जैसे कुंडिन पुण्य के लोगों ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा पहली बार, तो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को अपनी नेत्रोरूपी पात्र से वो पीने लगे, क्योंकि भगवान इतने सौंदर्यवान थे। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज जाग्रे, ऐसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य का धाम है जिसको पीते हुए कुंडिनपुर के लोगों को तृप्ति नहीं होती थी। वैसे ही ये भगवान की दिव्य कथा सुन के हमको तृप्ति नहीं होती, हम हमारे कर्ण रूपी पात्र द्वारा इसको पीते है लेकिन हमको तृप्ति नहीं होती है। तो हम चाहते है कि ये कथा साल में हमको कम से कम दो बार मिले, वैसा हमारा भगवान कृपा करके भाग्य दे, क्योंकि ये कथा रूपी अमृत स्वर्ग के अमृत से भी कहीं मूल्यवान है। ये कथा
का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। हमको बाहर एकेडमिक ज्ञान बहुत मिलता है जो ज्ञान शांति नहीं देता है। शांति देने वाला भागवत ज्ञान है। इसलिए भागवत कथाकार श्री होलीनेस श्री राधा गोविंद महाराज को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और हमेशा हम उसकी ऋणी है।
हरे कृष्ण। परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज जी, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आपके विषय में कुछ भी कहने के लिए मैं बहुत असमर्थ हूँ, इसलिए मैं कुछ आपके बारे में नहीं कहूँगी। लेकिन आपकी जब भी मैं कथा सुनती हूँ तो लगता है कि जैसे हम अलग दुनिया में हैं। और quote unquote when he says कि भगवान वास्तव में बहुत सुंदर है, बस ये बात सुनकर मन गदगद हो जाता है। आपने जब जब भी कथा की तब भगवान के रूप और गुण बहुत समझाए और विस्तार से कहा, और इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उनके डिफरेंट नेम, आपने उनका उनकी व्याख्या की, जैसे कि गोविंद का मतलब आपने बताया कि जो पीड़ा को दूर करने वाले हैं, पृथ्वी को सुख देने वाले हैं और इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद। मुकुंद आपने कहा जो दुखों से मुक्ति देने वाले हैं, जीवन जिनका चिंतन मात्र करने से दुखों की मुक्ति होती है। आपने रुक्मिणी जी ने जब उनको संबोधन किया तो उन्होंने कहा था कि भुवन सुंदर, और उसका व्याख्या आपने की कि जो तीनों लोग में सबसे ज्यादा सबसे अधिक सुंदर हैं। गोपाल जो गायों के और वेदों का पालक है। अजीत जो किसी भी बात पर किसी से भी कभी पराजित नहीं होते, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और भगवान के गुण का वर्णन करते आपने बताया कि भगवान आप में पूर्ण शुद्ध है, उनकी लीलाओं में अविद्या नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि भगवान ने यहाँ शायद छल किया होगा, यहाँ कपट किया होगा, लेकिन उसमें अविद्या नहीं है क्योंकि वो अपूर्ण शुद्ध है अपने आप में, बिल्कुल निर्मल। और सुनने वाले भी उनकी कथा सुनने से सुनने वाले भी निर्मल होते हैं, और इनका उनकी लीलाएं चिन्मय है, दिव्य और प्रकाशमय है। और हमारे चित्त की शुद्धि तभी होगी जब हम उनकी कथा का स्मरण करें। भगवान की कथा स्वयं पवित्र और मधुर है, ये बात सबसे आप जब कहते हैं तब ये बात बहुत सच लगती है, क्योंकि जब जब आपसे सुनते हैं तो लगता है कि और भी अधिक सुने। आपने जब देहात्म ज्ञान की बात की तब आपने ये समझाया कि देह और आत्मा कैसे भिन्न है, आत्मा कैसे भिन्न है, और उसमें आपने उदाहरण दिया था चंद्रमा का, और कहा था कि चंद्रमा जो दृष्टा है और वस्तु है दोनों में प्रकाश भरता है, लेकिन उनका दोनों से संबंध नहीं है। और आपने ये बात बार बार की कि आत्मा का देह से कभी न संयोग होता है न वियोग होता है। और आज तक मैं ऐसे मानती थी कि राधा रानी के समान रूपवती कोई है ही नहीं, लेकिन जब आपने जब रुक्मिणी जी के सौंदर्य का डिस्क्रिप्शन दिया, देन आई रियलाइज के रुक्मिणी जी भी इतनी ही सुंदर थी। आपने उसको परम सुंदरी भागवतम में कहा गया है, उनको इतनी शीलवान भी है। और मैं एक बात कहना भूल गई कि भगवान के गुणों में जब आपने कहा कि भगवान जैसे कृपालु कोई नहीं है, और आपने अपने पुतना का उदाहरण दिया, ये बात कभी समझ में आई नहीं थी कि ये भगवान की कृपा थी। और ये बात ये सेंटेंस एग्जैक्टली ये वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम भगवान और सती परम सुंदरी रुक्मिणी एक दूसरे के लिए ही बने थे, और लोग सारे सब जगह यही बात करते थे कि वही दोनों एक दूसरे के लिए विवाह के लिए योग्य है और कोई है ही नहीं, न रुक्मिणी जी के लिए है न भगवान के लिए है। और एक दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा ब्राह्मणों के गुण बताए कि ब्राह्मण कैसे वेदों के जानकार होते हैं, जो मिलता है उसमें संतोष रहते हैं और अपने आप में आनंद में रहते हैं, मधुर स्वभाव वाले होते हैं, शांत है और कभी क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि यही देखा जाता है कि इतने जाप करने के बाद भी क्रोध नहीं छूटता है, इतना जल्दी आता है कि बिना बताए फॉर एनी लिटिल रीजन इट जस्ट पॉप्स एंड इट्स लाइक ए पैनिक अटैक। आई मीन बचा नहीं जाता तो इतना सोचने पर भी, इतना पढ़ने पर भी, इतना समझने पर भी। तो ब्राह्मण बनने से तो बहुत बहुत दूर है अभी। बस यही है कि आप हम पर स्नेह रखिएगा, स्नेह कभी कम मत करिएगा, आप जहाँ भी जाइएगा जरूर जाइएगा लेकिन हमें कभी न भूलिएगा। हम कम मात्रा में शायद यहाँ इकट्ठे होते हो लेकिन हम आपकी बहुत आतुरता से राह देखते हैं, यही सोचते हैं महाराज जी प्लेन में करते होंगे, उतरने की तैयारी कर रहे होंगे, शायद कार में होंगे। तो हम पर स्नेह रखिएगा और प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि हम पर प्रेम करे प्रभु और हमारा प्रभु के लिए। हरे कृष्ण।
पूज्य श्री राधा गोविंद जी महाराज एवं समस्त वैष्णव बहनों और भाइयों, जय श्री कृष्ण। पूज्यपाद की यह हमारे प्रति अच्छी अनुकंपा है कि इतने व्यस्त समय में से भी थोड़ा समय आप प्रतिवर्ष पिछले 4 वर्षों से हमें भी प्रदान करने की कृपा एवं अनुग्रह कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने महाराज जी को राधा गोविंद नाम उनके हृदय की कृष्ण भक्ति के कारण ही दिया था। आपके नाम के अनुकूल ही महाराज के हृदय में श्रीमती राधा रानी एवं परम ब्रह्म परमेश्वर श्री गोविंद पूर्ण जागृत रूप से विराजमान है। तभी तो माता सरस्वती भी महाराज के जिह्वा एवं वाणी से श्री कृष्ण गुणानुवाद आंखों देखी बात की तरह प्रकट करती है तथा हम उस वाणी को मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। अवश्य ही पूर्ण जन्म में संचित कुछ सत्कर्म हमें भागवत महाराज का सानिध्य प्रदान करते हैं। श्री हरिचरणों में हम सभी यह मंगल कामना करते हैं एवं प्रार्थना बारंबार करते हैं कि हमें यह कृपा सदैव प्राप्ति होती रहे ताकि हम मानवीय जीवन को सफल बनाने का प्रयास उन्हीं की कृपा से करते रहें। महाराज श्री एवं वैष्णव श्री कृष्ण चरणों का दास मनमोहन दास।
हरे कृष्ण। आदरणीय परम पूज्य संत श्री राधा गोविंद महाराज जी के चरण कमल में मैं यह अनुमोदन करने की चेष्टा करती हूँ। कुछ भी बोल हो तो महाराज जी कृपा करके माफ कर दे, ये सीखने की तरफ हमारी एक प्रयत्न है। ये सब जो बात है मैं यहाँ एक रिवीजन के तौर पे मुझे जो समझ में आया है और याद रखना है उस प्रकार से बताना चाहती हूँ। महाराज जी ये समझ में आया है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण की शोध में है, हमें इस बात का ख्याल आता है, पर यह परम सत्य है, श्री कृष्ण ही सर्व अस्तित्व में रहली सर्व वस्तुओं के स्रोत है। सर्व युग में महान संत पुरुषों ने और पूजनीय महाराज जी ने यहाँ पर यह जीवित उदाहरण देके हमें समझाया है। भगवत भावना की यह स्थायी कायमी स्थिति दरेक जीव में पुनर्जीवित की जा सकती है। यही श्री भागवतम जैसे महान ग्रंथ के पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से जो श्रवण करने से हमें प्रतीति होती है। महाराज जी ने जो भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी की लीलाओं का श्रवण करके प्रत्यक्ष भगवान के अपूर्व प्रेम की अनुभूति हमें कराई है, हम हमारे विचार शब्द और कार्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के और उनके पवित्र नाम के जप करने के भगवत भावना को पा सकते हैं, यह समझाया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी ने हमें समझाया है, जब मन और चेतना की शुद्धि होती है तब भगवान की लीला सुनने की और इच्छा बढ़ती है, और भगवान की कथा का श्रवण मात्र ही हमारी चेतना की शुद्धि करती है। कथा का रस नित्य नूतन है, मनोमल का नाश करती है। महाराज जी यह बात जरूर से समझी गई है कि हमें अंग्रेजी में जो न्यूज हर रोज जो टीवी पे आते हैं उसकी पल पल जानकारी और इंटरनेट पर जानकारी रखने के बदले हमने श्री कृष्ण कथा सुनने की लालसा बढ़नी चाहिए, यही बात हमें समझ में आई है। ब्राह्मण के गुण जैसे कि हमें निरहंकारी बनना है, शांत रहना है, संतुष्ट रहना है, यह बात आपने समझाई है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का जो महाराज जी के मुखारविंद से अद्भुतपूर्ण जो सौंदर्य और ऐश्वर्य का वर्णन श्रवण ही भगवान के साकार रूप का प्रमाण देती है, और हमें महाराज जी ने उनके प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ पर करवाए हैं। जीव को इतना ही है कि पुकारे भगवान को, यह बात महाराज जी ने हमें ऐसे समझाई है जैसे कि छोटे एक शिशु को उसकी माँ बोलना सिखाती है, पुकारना सिखाती है, उसी तरह हमें महाराज जी आपने सिखाया है कि हमें भगवान को पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी पासपोर्ट की बात तो बहुत दिमाग में ठीक बैठ गई है, क्योंकि यहाँ तो पासपोर्ट के बिना एक पल भी और एक कदम भी उठाया नहीं जा सकता है, तो उस पासपोर्ट के द्वारा हमें भगवान जी के पास की जो बात आपने समझाई है कि वहाँ के पासपोर्ट का हमें जरूरी से इंतजाम करना चाहिए, वो बात तो दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो गई है। पुण्य कर्म से ही हमारी भक्ति तत्पर है, भगवान का कीर्तन श्रवण हमें करना चाहिए। और आगे बात है जो हमें समझ में आई है, वो महान व्यक्ति उपकार नहीं भूलते हैं, अपकार भूल जाते हैं। समुद्र के पानी में जैसे तिनका कुछ नहीं कर पाता है, वैसे ही अच्छे वैष्णव बनने का, शांत रहने का हमें स्वभाव बनाना चाहिए। संबंधियों के शेषों का दुषों का हमें क्षमा करनी चाहिए। आत्मा और शरीर के बारे में हमें समझना चाहिए, और आत्मा का देह से कोई संयोग या वियोग नहीं है, वह बात बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आई है। महाराज जी यह सब कुछ जो है श्री कृष्ण को अर्पित करके हमें हमारा जीवन बनाना चाहिए, और उनके प्रसाद के रूप सभी चीजों को ग्रहण करनी चाहिए। महाराज जी आपके आशीर्वाद से ही श्री कृष्ण भगवान की सेवा करने की और हमारी चेतना शुद्धि करने के हमें आशीर्वाद दीजिए, और हमें इस भागवत कथा का निरंतर हमें श्रवण करवा के शब्द प्रमाण की जो आपने प्रतीति करवाई है और गुरु परंपरा की जो हमें अनुभूति करवाई है, वो उसके लिए हमें हमारे पास कुछ भी ऋण अदा करने के लिए नहीं है। ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद, और महाराज हमारा कोटि कोटि वंदन।
परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। तो सभी उपस्थित वैष्णवों को भी मेरा प्रणाम। अनफॉर्चुनेटली मैं पूरी कथा तो नहीं सुन पाया इस बार, लेकिन जो भी भगवान की कृपा रही जितना मैं सुन सका। बोलते हैं कि पहला दिन और आखिरी दिन अटेंड करने से कथा का पूरा महत्व मिलता है, तो वह तो मैं किया हूँ। और जो महाराज जी की कथा में जो मुझे दो बातें, वैसे तो काफी कुछ है कहने को, लेकिन जो मुझे दो बातें जो शुरू में ही अच्छी लगी थी, जैसे भगवान का शील जो प्रभाव है, जो उन्होंने डेफिनेशन बताया शील का कि कितने दयालु हैं, कि पूतना जो उन्हें विष देने आई थी तब भी उन्होंने उनको माँ का दर्जा दिया। तो हम सोच सकते हैं कि अगर हम उनका श्रवण कीर्तन अगर कुछ भी करें तो वो कितना हमसे प्रेम करेंगे, क्योंकि भगवान तो बोलते हैं गीता में ये ऐसा माम प्रपद्यन्ते कांस्य भजामि, कि जितना हम जिनके उनको सरेंडर करेंगे भगवान भी हमको उतना सरेंडर करते हैं। और दूसरी बात उन्होंने बताई जो कि बहुत मुझे अच्छी लगी, जो कि हम कभी कभी सोचते हैं कि ये पुण्य कर्म है, ये तो बस कर्म है लेकिन भक्ति नहीं है। लेकिन भगवान राधा मोहन महाराज जिस प्रकार से बताया कि जैसे कि दूध अगर भक्ति है तो उसको रखने के लिए लोटा जरूरी है, तो भूमिका जो उन्होंने बताई है पुण्य कर्म की भक्ति के लिए वो बहुत जरूरी है।
आज जॉब पर गया था उस टाइम में थोड़ा कुछ लिख लिया था, वो मैं अभी बता रहा हूँ। पूज्य आदरणीय श्री राधा गोविंद जी महाराज, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हर साल नियमित आपसे भगवत कथा का श्रवण करने का अमूल्य अवसर प्राप्त होता है। आज से ही आने वाले वर्ष में फिर ऐसा अवकाश प्राप्त होगा, इसलिए मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा अवसर फिर प्राप्त हो। हर साल एक वीक तो कथा सुनने का भाग्य मिलता है, लेकिन अभी मेरा ये सूचन है कि तुम एक साल के लिए आ जाओ और हमको सारा भगवत का कथा सुनाओ। कोई कैसे भी, अभी नहीं तो कोई भी टाइम ऐसा होगा, ऐसे ही मेरी भगवान से प्रार्थना। एक बार जो आपने कृष्ण विवाह की कथा रुक्मणी के साथ हुआ उसके बारे में जो विस्तार से प्रवचन किया, भगवान की जैसी वैसी लीला होती है उस समय की, कैसे विवाह किया जा रहा था उसके बारे में आपने जो समझाया वो हमें बहुत अच्छा लगा। विवाह में विषय में दुर्गा पूजा का भी जो महत्व है वो भी हमसे पता चला, और हमारे कुटुंब में भी जो माता को पूजने की प्रणाली का चली आई है उसका भी हमें भाव समझने का अवसर प्राप्त हुआ। सभी बात जब आपने बलराम जी के द्वारा रुक्मणी को जो शिक्षा दी गई उसके टाइम जो आत्मा और शरीर के बारे में जो बताया वो हमें बहुत पसंद आया। फिर अगले साल की कथा का इंतजार रहेगा।
महामंत्र भी कर रहे
आपकी आज्ञा से मैं महामंत्र बोल देती हूँ यहाँ पे। हरे कृष्णा, सब मेरे साथ बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज आप बहुत इंतजार के बाद आए हैं, हर क्षण आपके आने का यहाँ इंतजार रहता था। सब पूछते थे कि कब आ रहे हैं, क्या प्रोग्राम है, और ये पल पाके हम लोग कृत कृत हो गए। कथा सुन के इतने आभारी हैं कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। और कृष्ण मोहन दास तो पता नहीं वहाँ से कितना आभारी होंगे, जो हम उनके भावों का यहाँ पे बिल्कुल भी प्रकट नहीं कर सकते। और जो आपने कथा सुनाई रुक्मणी विवाह की, सत्य भामा जी की, और जामुन किया, तो हम जब हम लोग वापस जा रहे थे तो मुझे एक याद है, कार में बैठे मेरी माता सत्यभामा माता जी ने कहा कि मैं अगले जन्म में अगर मुझे भगवान मेरे पर कृपा करें तो मैं रुक्मणी नहीं बनना चाहती, क्योंकि सत्यभामा नहीं बनना चाहती, पर मुझे रुक्मणी बना दे जो मैं हर समय भगवान के चरणों में रहूं और उनकी सेवा करती रहूं। तो इतना प्रभाव हुआ कि हम लोग भूल ही नहीं सकते। तो आपके बहुत आभारी हैं, आप हमेशा आइए और हम लोग को सब इस बहती गंगा में प्रभावित करिए और आशीर्वाद दीजिए कि सब जने इसमें इसका आनंद लेते रहे। हरे कृष्ण।
बहुत शांति पूर्वक लोग कथा सुनते हैं और महाराज बड़े आनंद के साथ कथाएं प्रस्तुत करते हैं। मुझे भी यह दूसरा साल है कथा सुनने के, एक बार और हम कथा में यहाँ आए थे, कथा हुई थी, बहुत बढ़िया लगा था। और विशेषकर इस बार महाराज की कथा प्रस्तुत प्रारंभ किए तो जो रुक्मिणी जी ने जो पत्र लिखा है, तो पत्र में रुक्मिणी जी ने श्रवण का बहुत बढ़िया महात्म्य उसने खुद ही बताया रुक्मिणी जी ने। और रुक्मिणी जी बताई कि रुक्मिणी जी का भगवान के प्रति कैसे स्नेह हुआ, कैसे भगवान के प्रति आकर्षण हुआ। यद्य कि रुक्मिणी जी भगवान की नित्य प्रिया है, उनकी नित्य सहयोगिनी है, उनकी नित्य हलादनी शक्ति है, फिर भी जब भगवान यहाँ प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, मानवीय लीला करते हैं, तो उनके परिकर जन भी वैसा लीला करते हैं। तो रुक्मिणी जी का यद्यपि नित्य स्नेह है, फिर भी रुक्मिणी जी ने कारण बताया है कि मेरा कृष्ण के प्रति कैसे स्नेह हुआ, कृष्ण के प्रति कैसे आकर्षण हुआ, कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम हुआ। उसमें व्यक्त किया है रुक्मिणी जी ने कि यद्यपि मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा अवसर मिला था कि हमारे पिताजी साधु हैं, महात्मा थे, तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ पिताजी के घर में बहुत लोग साधु महात्मा आते रहते हैं और भगवान की कथा सुनाते रहते हैं, आपके विषय में वर्णन करते रहते हैं। तो आपके विषय में महात्माओं के मुंह से जब मैंने सुना तो उस महात्माओं जो कृष्ण के आपके विषय में कथा कही तो वह शब्द मेरे कानों से प्रवेश करके मेरे हृदय में प्रवेश किए, तो आपके प्रति मेरा स्नेह हो गया। इससे भागवतम के कथा का, कृष्ण कथा के महात्म्य का भी बोध होता है। यदि कोई भी व्यक्ति यह चाहता है कि भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो, भगवान के प्रति आकर्षण हो, भगवान के प्रति भक्ति है, भक्ति हो, तो इसका एक सबसे सशक्त साधन है, सबसे सरल साधन है कि भगवान के गुणों के विषय में, भगवान के लीला के विषय में, भगवान के नाम के विषय में श्रवण करें। तो यह अवसर महाराज ने जो दिया, यदि हम लोग चाहते हैं कि हमारा कृष्ण प्रेम बढ़े, तो इसके लिए सबसे सशक्त, सबसे सरल और सबसे बढ़िया सुलभ साधन यही है कि हम लोग नित्य कृष्ण के विषय में, भगवान की लीला के विषय, भगवान के नाम के रूप में उनका श्रवण कीर्तन करते रहे। तो यह अवसर, ऐसे जो आयोजन होते हैं श्रीमद् भागवतम के आयोजन होते हैं, यह अवसर स्वाभाविक मिलता है, जिसे रुक्मिणी जी ने रिकमेंड किया है, सभी आचार्यों ने रिकमेंड किया है। यदि हम कृष्ण प्रेम चाहते हैं, कृष्ण के प्रति आकर्षण चाहते हैं, तो हमें निरंतर हमें श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो इस कथा से हमें अच्छा लगा कि ऐसे जैसा भक्त लोग वर्णन कर रहे थे महात्मा का, तो किसी न किसी कारण से हम लोग भगवान के विषय में सुनते हैं, उनकी लीलाओं के विषय सुनते हैं, उनके गुणों के विषय में सुनते हैं, तो उससे भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़ती है। तो महाराज जी का बड़ा बड़ा योगदान है यहाँ के भक्तों के लिए, यहाँ पर नित्य निवास करते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं, तो उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर है कि अपने कृष्ण भक्ति को बढ़ा सके। और यह अच्छा है, महाराज प्रति वर्ष यहाँ आते हैं और कुछ समय तक यहाँ के भक्तों को कथा सुनाते हैं। मुझे भी व्यक्तिगत रूप से यह कथा सुनकर बहुत अच्छा लगा। सेमंतक मणि की जो कथा विशेषकर वह भी बहुत अच्छी लगी। इसके अतिरिक्त रुक्मिणी जी का जो भगवान के साथ श्रेय हुआ, कैसे विवाह हुआ, तो पूरा मंगलमय प्रसंग रहा और बड़े आनंद के साथ हम श्रवण किए। हरे कृष्ण।
ये हमारा जो छोटा सा हिम वृंदावन धाम है, ये हमारा छोटा सा सबका फैमिली है। हम हर संडे को यहाँ आने के लिए उसकी राह देख रहे हैं, और आप जैसे हम जो इतने स्नेह प्रेम से जो हमको भागवत का थोड़ा सा ज्ञान, जो भी ज्ञान हमको दिया है, वो जैसे राम की गंगा है, और उसमें जो स्नेहपूर्ण जो भगवान का जो रूप हमको दिखाया है, कभी कभी हम बैठ के माला करते हैं या भगवत का गीता का श्रवण करते हैं, तो लगता है कि कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं। लेकिन जब सारे ये सारा सप्ताह जब ये कथा सुनी, तो लगता है कि उसमें बहुत सा कुछ है, और इस देश में हमारे लिए ये स्नेह प्रेम ही नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक स्नेह का भाव है जो तुम्हारे देश, तुम हम यहाँ आके हम तुम हम तुम्हारे साथ वृंदावन को भी लेके आए हैं, और इसकी प्रतीति हमको खा रही है। हरे कृष्ण। ये वृंदावन की जो हमारी जो गलती जो है, जो शंकर ऋषि वृंदावन दास प्रभु और सब जो अदरती वोटी जो यहाँ सब मिलके जो ज्योति जो जलाए रखते हैं, उसमें आप घी के समान है।
और भी कोई भक्तगण महाराज के अनुमोदन करना चाहेंगे? Thank you.
हरे कृष्णा। गुरु महाराज के चरण में मेरा सादर प्रणाम और सभी वैष्णवों को भी मेरा प्रणाम। पूरी कथा सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बस महाराज यही रुक जाए और हमें इस कथा की गंगा में नहाने का हर रोज अवसर दे। लेकिन हम इतने भी सेल्फिस नहीं बन सकते। हमारे कई गुरु भाई है, कई लोग हैं, उन लोगों को भी ये गंगा में नहाने का अवसर मिले, इसलिए हम महाराज को यहाँ रोक तो नहीं सकते। लेकिन मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ कि महाराज हर साल आइए और ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारे साथ रहे और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि आप जो भी कथा सुनाते हैं हम लोगों को वो हमारे जीवन में उतारने का हम प्रयास करें। बस इतना ही आशीर्वाद हम लोगों को चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बस सुना और ये टेम्पल रूम के बाहर निकले और सब भूल गए। क्योंकि हम लोग संसारी है तो कई विपत्तियां आती है और भूल जाते हैं। तो महाराज हम सबको और हमारे फैमिली को आशीर्वाद दीजिए कि हमें जो भी सुना ये 6 दिन में वो हम हमारे जीवन में उतारे और बस भगवान की खूब भक्ति करे और कई भी दुख भी आए तो भी हम विचलित न हो पाए। बस इतना ही हम लोग आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण।
आदरणीय महाराज जी, मैं कुछ लिख के तो नहीं आया हूँ, मगर जो भागवत कथा हमने सुनी इसे कभी का एक दोहा याद है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो मैं आवेदा हम लोग सब इधर सुख में आपका भागवत सुनने का चांस मिला, इसलिए हम आप सबके आभारी हैं और बार बार इस तरह हमको भागवत सुनाते रहिए। और किसी ने भी कहा है कि संत समागम और भगवत कथा तकदीर वाले को ही मिलता है, तो हमको इसी साथ दोनों मिल गए, संत समागम भी मिल गया और भागवत भी मिल गया। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा महाराज, आपको सादर प्रणाम। हम इतना तो जल्दी नहीं बोल सकते, इंग्लिश तो आता नहीं लेकिन हिंदी तो थोड़ा आता है। आपने जो कथा सुना है इसने हमें बहुत कुछ जानने को मिला और आपके वहाँ कोई होम प्रोग्राम में भी हम आए आपके साथ, तो वहाँ पे हमको कुछ कुछ आंसर मिला जानने का।